الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أصدق من الله قيلا وقال الله تعالى في مقام آخر ألا إن وعد الله حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کو اس دنیا سے بعض تجربات کی وجہ سے کچھ باتوں کا پکا یقین ہو جاتا ہے، وہ تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، بار بار تجربات اور مشاہدات کی وجہ سے یقین بن جاتا ہے کہ یہ پکی بات ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے زہر کھا لی، اس کی موت واقع ہو گئی، تو یقین بن گیا کہ زہر کے کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے. کسی کو سانپ نے ڈس لیا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس بات کا یقین ہو گیا. کسی کو بجلی کا کرنٹ لگا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو یقین بن گیا کہ بجلی کے ٹچ کرنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم روزانہ اپنے دفتر جاتے ہیں، اس سے ہمیں نفع ملتا ہے، زندگی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. ایک یقین بن گیا کہ بزنس کرنے سے انسان اچھی زندگی گزارتا ہے، تعلیم اچھی ہو، نوکری اچھی ہو، اچھی پے ملتی ہے، اچھی زندگی گزرتی ہے. کھیتی باڑی میں ہم محنت کریں گے تو ہمیں پروفٹ ہوگا، اچھی زندگی گزرے گی. تو یہ تمام مثالیں روزمرہ کی ہیں. چونکہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہوتا دیکھتے ہیں، تو ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کام تو ایسے ہونا ہے. چنانچہ اگر کوئی اس کے خلاف کہے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ 1000 چھوٹے چھوٹے پیس مٹھائی کے ہیں، صرف ایک میں زہر ہے، باقی سب بالکل ٹھیک ہیں، تو آپ کھائیے، تو ہم کبھی بھی ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے. اتنا یقین ہوتا ہے. کوئی کہے جی کہ یہ سانپ ہے، آپ ہاتھ لگائیے، کبھی بھی قریب نہیں جائیں گے، دور سے دیکھ کے بھاگیں گے. تو جب انسان کو تجربات اور مشاہدات کی وجہ سے یقین ہوتا ہے تو اس کے مطابق انسان اپنا کام کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں نظر کا راستہ، کہ دیکھ کر پھر بات کو ماننا. ایک ہے خبر کا راستہ، کہ کسی کی بات کا یقین کر کے بات کو مان لینا. مثال کے طور پہ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے والد ہیں. کس نے کہا؟ والدہ نے کہا. تو والدہ کے کہنے پر ہم نے تسلیم کر لیا کہ جی یہ ہمارے والد ہیں. کبھی کسی نے گواہ مانگے؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ کوئی عینی شاہد؟ ضرورت ہی نہیں، جب والدہ نے کہہ دیا. اب ہماری والدہ سچ بھی بولتی ہے، مصلحت کے تحت جھوٹ بھی بول سکتی ہے، بندہ بشر ہے نا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس شریعت کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے. وہ تو صادق الامین تھے. تو एक है नजर का रास्ता, एक है खबर का रास्ता कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हम मानते हैं जन्नत है जहन्नम है, हम मानते हैं कि खुदा मौजूद है, उसने इतनी किताबों को उतारा, अंबिया को भेजा, हम हर चीज को मानते हैं। तो ये खबर का रास्ता है कि जिससे हम बात को मानते हैं। चुनाचे जो बंदा शरीयत को तस्लीम करता है, नबी इस्लाम की बात की सच्चाई उसके दिल में उतर गई है, उसको भी इसी तरह पक्का यकीन होता है कि हदीस पाक में ये आ गया, अब ऐसा हो के रहना है। मिसाल के तौर पर जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा करता है उसका माल अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। अब यकीन होना, दारुल देवबंद के एक खाजिन थे जिनको अल्लाह ने बड़ा माल दिया था, उनका तकिया कलाम था अल्लाह के फजल से। एक रात वो जब वो तहज्जुद में उठे तो क्या देखते हैं कि जिस कमरे में उन्होंने अपना माल पैसा रखा हुआ था उसके ताले को जो छोटा सा लगा हुआ था एक चोर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अपना घर है, अपना कमरा है, ये आराम से अपने वजू में लगे रहे, तहज्जुद पढ़ने लगे रहे। जब फजर का वक्त हुआ तो मस्जिद जाना था तो उस वक्त चोर के पास गए, फरमाया भाई अभी तक आपसे ये ताला नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। तो वो चोर भाग गया कि मालिक जाग गए। इन्होंने आके मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी तो मुहतमिम साहब जो उस वक्त थे उन्होंने नमाज पढ़ाई तो ये खजानची साहब ट्रेजर जो थे दारुल के वो आए और कहने लगे हजरत आज तो अल्लाह के फजल से अल्लाह का गजब हो गया। उन्होंने कहा आप क्या कह रहे हैं, अल्लाह के फजल से अल्लाह का गजब हो गया। अब वो कहना चाहते थे अल्लाह का गजब हो गया मगर तकिया कलाम की वजह से कह रहे थे अल्लाह के फजल से अल्लाह का गजब हो गया। फिर जब पूरा वाकया सुना तो उन्होंने कहा कि भाई जब उठ गए थे तो शुरू से ही आपने चोर को क्यों ना भगा दिया। वो कहने लगे मौलाना आपसे मैंने सुना था जो पूरी पूरी ज़कात देता है उसका माल अल्लाह की हिफाजत में होता है, मैं चूंकि ज़कात अदा करता हूं मुझे यकीन था कि कोई मेरे माल को चोरी नहीं कर सकता। तो हदीस मुबारक के ऊपर इतना यकीन होना कि यह 100% पक्की बात है। चुनाचे हदीस पाक से साबित होता है कि जो इंसान हराम माल कमाता है उसके नतीजे में अल्लाह ताला उसकी औलाद को नाफरमान बना देते हैं। हम आंखों के सामने मिसालें देख सकते हैं, कितने लोग हराम कमाते हैं और उनकी औलादें उनके सामने नाफरमानी करती हैं। फिर कहते हैं जी पता नहीं बच्चे अफलातून बन गए हैं, हमारी तो सुनता नहीं मानता नहीं। भाई तुम अल्लाह की नहीं सुनते और मानते, औलाद तुम्हारी कैसे सुने और मानेगी। तो यकीन हो जाना। चुनाचे हदीस पाक से साबित होता है कि जो आदमी सूद इस्तेमाल करता है उसका माल बर्बाद हो जाता है। हमने इस जिंदगी में अपनी आंखों से बीसियों बंदों को बैंकरप्ट होते देखा, सूद का काम शुरू किया कारोबार ही डूब गया। तो इन बातों का इसलिए यकीन होना कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, यह है खबर का रास्ता, पक्की बात होती है। मेडिकल के मैदान में जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में लाया जाता है ना और कहा जाता है जिसको बुखार है तो बुखार की कई रीजंस होती हैं, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकती है, मलेरिया हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं। ये जितनी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं इनको कहते हैं डिफरेंशियल रीजंस, कि ये मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। फिर उसका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और ब्लड टेस्ट से फाइनल पता चलता है कि नहीं, ये तो मलेरिया था। इसको कहते हैं डेफिनेट रीजन। डेफिनेट रीजन के बाद डॉक्टर कह देता है कि जी अब ये इसका इलाज है, करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और वो आदमी ठीक हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम नजर से जो देख रहे होते हैं वो डिफरेंशियल रीजंस होती हैं, लेकिन जो नबी अलैहिस्सलाम ने बतला दिया वो डेफिनेट रीजन होती है, पक्की बात होती है। मुसलमान होने के नाते इसके ऊपर हमारा पक्का भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में दो अंबिया के वाकयात बयान फरमाए। उनका मकसद कोई कहानी सुनाना नहीं था कि जैसे हम बच्चे को सुलाने के लिए कोई फर्जी कहानी सुना देते हैं, बल्कि उनका मकसद सबक देना था। एक कहानी सुनाई सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे पूछा, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम आपके दाएं हाथ में क्या है। कौल हिया सॉय, अर्ज किया ऐ अल्लाह ये मेरा असा है, अतवक्कऊ अलैहा व अहुशु बिहा अला गनमी वली फीहा मआरिब उखरा, टेक लगाता हूं, बकरियां चराता हूं, बड़े मेरे इसमें फायदे हैं। फरमाया अल्किहा या मूसा, इतने फायदे जो गिनवा रहे हैं इस असा के, तो जरा जमीन पर डालिए। जब जमीन पे डाला फ़ैज़ा है या हय्यतुन तसा, दौड़ने वाला पाइथन अजदहा बन गया। जब अजदहा को देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम घबराए, फ़ौजा सफ़ी नफ़्सिही ही खीफ़तम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में एक खौफ फील किया उसका। कुल ना, फरमाया हमने कहा खुजहा वला तखफ, इसको पकड़ लीजिए, डरिए नहीं। सनुईदुहा सीरत अहल उला, हम इसे दोबारा पहले वाली सीरत अच्छी अता कर देंगे। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, वो असा बन गया। अब ये सिर्फ कोई अनोखा काम दिखाना मकसद नहीं था, बल्कि सबक देना ये मकसद था कि ऐ मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, जिसको आप नफे की चीज समझते हैं हमारे हुक्म से जमीन पर डालते हैं वो नुकसान देने वाली चीज बन जाती है, और जिसको आप नुकसान देने वाली चीज समझ के दौड़ना चाह रहे हैं हमारे हुक्म से उसको हाथ लगाते हैं वो फिर नफे वाली चीज। तो नफा और नुकसान तो हमारे पास है, हम जब चाहते हैं जिस चीज में चाहें हम उसको डाल देते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम का एक यकीन बन गया। जब यकीन बना तो नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उसका प्रैक्टिकल भी करवाया कि अब एक सबक सिखाया है तो जरा बताइए आपने कितना सीखा। चुनाचे तीन मौके ऐसे आए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि मेरे रब ने जो मुझे सबक सिखाया था मैंने उसको 100% पक्का याद किया हुआ है। पहला मौका फिरौन ने फैसला किया कि ये जो दो आदमी हैं ना जो कहते हैं कि हम अंबिया हैं, ये तो जादूगर हैं, ये हमसे तख्त व ताज लेना चाहते हैं, तो क्यों ना हम भी जादूगरों को बुलाएं और इनके साथ मुकाबला करवाएं। चुनाचे जादूगरों को बुला लिया गया। जब जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, युखय्यलु इलैहिम मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा, तो ऐसे लगता था कि वो रस्सियां सांप बन गई हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अगर अकल से कोई पूछे क्या करना चाहिए, अकल कहेगी तुम अकेले हो, सांपों में घिरे हुए हो, तुम्हारे पास सिर्फ असा है, डंडा है, इसको मजबूती से पकड़ना, जो सांप तुम्हारे पास आए उसको डंडे से सर कुचल देना, तुम्हारे बचने का एक ही तरीका है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म क्या हो रहा है, अल्लाह फरमा रहे हैं ऐ मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम इस असा को जमीन पर डाल दीजिए। अकल चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है कि उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो जाएगी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने वो नहीं किया जो नजर देख रही थी, वो किया जो हुक्म था, चूंकि सबक पढ़ चुके थे। जैसे ही नीचे डाला, अल्लाह ने उसको अजदहा बना दिया और उसने उन तमाम सांपों को खा लिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाब फरमा दिया। दूसरी मिसाल, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया नील के किनारे पहुंचे और चाहते हैं कि दरिया नील को अबूर कर लें, क्रॉस करें। इतने में पीछे फिरौन भी अपने लाओ लश्कर को लेकर आ गया। अब आगे पानी का दरिया, पीछे इंसानों का दरिया, और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी सैंडविच बने हुए हैं। قال اصحاب موسى انا لمدركون, कहा मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कि अब तो धर लिए गए, अब नहीं बच पाते। मूसा अलैहिस्सलाम की एक यकीन भरी आवाज उठी, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नमा या रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। यकीन बना हुआ था ना। अब ऐसी सूरत हाल में अकल से पूछें क्या करना चाहिए। अकल मशवरा देगी कि फिरौन आ रहा है लश्कर के साथ, तुम्हारे पास सिर्फ एक असा है, डंडा है, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, खूब डट के मुकाबला करो। शिकस्त तो फतह नसीबों से है भले अमीर, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, रब्बे करीम की तरफ से हुक्म आता है, अनिद्रिब असाकल बहर, पानी पे असा मारिए। अकल चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि पानी पे असा मारने से क्या बनेगा, मारना है थोड़ा वेट करो, जब फिरौन पहुंच जाए तो उसके सर पे दे मारना। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो किया जो उन्होंने ऊपर से पैगाम पाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रास्ते बना दिए और बनी इसराइल उसमें से आराम से पार हो गए, अल्लाह ने उनको महफूज फरमा दिया। फिर एक तीसरा मौका आता है, बनी इसराइल वादी ती में, पीने को पानी नहीं, जीने को पानी नहीं, तो कौम आ गई, हजरत पानी नहीं है, कैसे जिएंगे, कहां से पानी पिएंगे। अकल से बंदा सोचे कि क्या करना चाहिए। अकल कहती है कि एक डंडा ही तो हाथ में है, अब ये करें कि आप आहिस्ता आहिस्ता जमीन को खोदें, गड़ा बन जाएगा तो नीचे से हो सकता है पानी निकल आए, मगर ख्याल रखना कि तुम्हारा डंडा टूटने ना पाए, दूसरा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि अल्लाह क्या करना चाहिए, फरमाया अनिद्रिब असाकल हजर, पत्थर पे मारे। फिर अकल चीखती है, शोर मचाती है कि पत्थर पर मारने से तो लकड़ी टूट जाएगी, उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो जाएगी। मगर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने सबक पढ़ा था, याद था, उन्होंने वही किया जो रब का हुक्म। नतीजा क्या हुआ कि पत्थर में से चश्मे जारी हुए और अल्लाह ने बनी इसराइल को पानी अता फरमा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बताकर फिर आगे जो अल्लाह ने तीन मिसालें दी, तो इनका मकसद ये था कि जो हमारी जात पर यकीन करता है, देखो हम किस तरह कदम कदम पे उसको कामयाब फरमाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही सबक सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पढ़ाया। उन्होंने पूछा, अल्लाह आप मुर्दों को कैसे जिंदा करेंगे। फरमाया अवलम तुमिन, क्या आप ईमान नहीं रखते। कौल बला, अल्लाह 100% ईमान है, वला किल्ले यतमईन कल्बी, दिल की तसल्ली के लिए बात कर दी है। फरमाया अच्छा, तुम इतने इतने परिंदे लो, और उनके गोश्त को कीमा बना दो, आपस में मिक्स करो और वो मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पर रख के आओ, फिर उनको अपनी तरफ बुलाओ, या तीन कसाया, दौड़ते हुए तो हमारे पास आएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों से देखा कि वो परिंदे जिंदा हुए और आए, एक यकीन बन गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सबक पढ़ाना था, फिर बाद में उनको इम्तिहान में भी डालना था, प्रैक्टिकल लेना था उसका। अब यकीन तो बन गया, मगर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था वो बहुत मुश्किल था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़िबतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमात, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने बाज चीजों में आजमाया, फातम्महुन, वो 100% उसमें कामयाब हुए, 100% नंबर लिए उन्होंने। एक बड़ा इम्तिहान ये था, कौम बुतों को पूजती थी, तो वो मूसा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी एक मेले में ले जाना चाहती थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कह दिया इन्नी सकीम, मेरी तबीयत ठीक नहीं। कई मरतबा इंसान फिजिकली बीमार होता है और कई मरतबा उसकी तबीयत नहीं चाहती किसी काम को करने को, तो उन्होंने फरमा दिया भाई मेरी तबीयत तुम्हारे इन कामों से बेजार है, मैं ठीक फील नहीं कर रहा। कौम चली गई। जब कौम गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया आज वक्त है, जिन माबूदों की ये पैरवी करते थे वो अकेले हैं, चले उनसे भी दो दो हाथ कर लेते हैं। एक कुल्हाड़ा लिया, जितने बुत थे फजअलहुम जुजाजा इल्ला कबीरा, सब के टुकड़े कर दिए, जो बड़ा था उसके कंधे पे कुल्हाड़ा डाल दिया। आगे कौम जब वापस आई, उन्होंने आके देखा कि बुतों के टुकड़े हुए पड़े हैं, तो वो कहने लगे कि ये कौन कह सकता है। बाज ने कहा कि इन्ना समेना फतेई यज़कुरुहुम युक़ालु लहु इब्राहिम, एक नौजवान से हमने सुना है वो हमारे बुतों के मुतल्लिक बातें करता है कि इनसे कुछ नहीं होता, खुदा से होता है, लगता है उसी ने कुछ किया होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुला लिया गया, पूछा गया कि भाई आपने किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा भाई देखो, जहां से आला बरामद होता है तो पहले तो दरियाफ्त वहां से करते हैं ना, तो कुल्हाड़े से टुकड़े हुए, तुम्हारा कुल्हाड़ा कहाँ है बड़े बुत के कंधे पे, के पूछो इससे। वो कहने लगे बुत तो नहीं बता सकता, उनका फिर खुदा किस लिए मानते हो, जो अपने आप को नहीं बचा सकता, क्या गुजरी जो ये नहीं तुम्हें बता सकता, तुम उसको खुदा मानते हो। अब कौम लाजवाब हो गई। एक उसूल याद रखें कि जब कोई बंदा लाजवाब हो जाता है ना, वो फिर बजंगा मत, लड़ने पे तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास दलील तो है नहीं कि वो जबान से बात करे। चुनाचे कौम को भी आगे से जवाब तो मिला कोई ना, कहने लगे हर रेकूह, इसको आग में जलाओ, वंसरु आलिहतकुम, अपने माबूदों की मदद करो। अल्लाह की शान, वक्त के बादशाह ने अनाउंसमेंट कर दी कि इतने अरसे के बाद हम आग जलाएंगे और उसमें इस बंदे को डाल के इसको जला देंगे। अब चूंकि आग जलानी थी, बुतों का मामला था, तो उसने कहा कि लोग उसके लिए लकड़ियां इकट्ठी करें। उस जमाने की औरतें मन्नतें मानती थीं, बेटा हुआ तो इतने मन लकड़ी डालूंगी, सेहत हो गई बीमार को इतने मन लकड़ियां डालूंगी। एक पहाड़ लकड़ियों का बन गया था। बिल आखिर उसको आग लगाई गई, आग इतनी थी कि कोई उसके करीब भी नहीं जा सकता था। एक झूला बनाया गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूले में बिठा के दूर से फेंकेंगे। अब सही ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग भड़कती नजर आ रही है, आग के शोले आसमान से बातें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यकीन पर, ईमान पर, घबराहट नहीं,
परेशानी नहीं, डिप्रेशन का नाम निशान नहीं, पुरसकून दिल है। हत्ता कि उनको उस झूले में बिठा दिया गया और बिठा के उनको आग की तरफ फेंक दिया गया। अभी वो हवा में थे तो फरिश्तों में से एक फरिश्ते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनके जिम्मे कई काम लगाए हुए हैं, उनके चार्टर ऑफ ड्यूटी में से है अंबिया पर वही लेके आना, उनके चार्टर ऑफ ड्यूटी में से है अंबिया की ईमान वालों की मदद करना, उनकी चार्टर ऑफ ड्यूटीज में से है अनाउंसमेंट करना, मुअज्जिन भी हैं फरिश्तों के। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करते हैं दा जिब्राईल, ए जिब्राईल मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, वो आवाज लगाते हैं, आसमानों के फरिश्ते मोहब्बत करने लग जाते हैं, वो आवाज जमीन पर लगाते हैं, बंदे मोहब्बत करते हैं, सुम यूद कबूल फिल अर्ज। तो ये भी जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम है। लैलतुल कदर में फरिश्तों के साथ उतरना, ये भी जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम है। अब चूंकि ईमान वालों की मदद करना उनका मनसब है तो वह अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछते हैं, ए करीम आका, आपके प्यारे खलील आग में डाले जा रहे हैं, क्या मैं मदद कर सकता हूं? जैसे हम दफ्तरों में आज पूछते हैं ना जी, कैन आई हेल्प यू, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी ऑफर की कि क्या मैं मदद कर सकता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हां जाओ पूछो, अगर आमादा हैं तो करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आके इब्राहिम खलीलुल्लाह से उस वक्त पूछते हैं, अल्लाह का हाजा, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यकीन देखिए, एक फरिश्ता पूछ रहा है मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और वह आगे से सवाल पूछते हैं कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत को इल्म है कि मैं इस हाल में हूं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हां, फरमाने लगे हस्बी सुआली इल्महु बिहाली। ये जो है ना कि अल्लाह को पता है मैं इस हाल में हूं, इस इल्म ने तेरे सामने मुझे सवाल करने से रोक लिया है। मैं जब रब को पता है तो बस काफी है। अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि यकीन ये होता है और मोहब्बत निभाना इसको कहते हैं। रब्बे करीम ने भी कुरान मजीद में खुश होकर फरमा दिया व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, मैं इब्राहिम बड़ा वफादार निकला। तो देखिए एक सबक पढ़ा था यकीन का, जब प्रैक्टिकल आया अल्लाह ने सुरखरू फरमा दिया। तो कुरान मजीद में एक मिसाल नहीं दी, दो मिसालें दी कि जरा देखो, अगर उन अंबिया के साथ अल्लाह ने खैर का मामला किया, तुम भी अगर अल्लाह के हुक्मों पर चलोगे अल्लाह तुम्हारे साथ भी खैर का मामला करेंगे। हम इसकी तिलावत तो करते हैं, कभी इनके सबक को समझने की कोशिश की हमने? चुनाचे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजीब, कुरान मजीद का जरा एक नुक्ता सुनिए कि जो शख्स अल्लाह पे यकीन करता है, जो सबब जिल्लत का होता है अल्लाह उसी को इज्जत का सबब बनाते हैं, जो सबब नाकामी का होता है अल्लाह उसी को कामयाबी का सबब बनाते हैं, उसी को सबब बनाते हैं। अब इसकी मिसालें कुरान अजीम शान में से देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा अपने बेटे को दरिया नील के अंदर डाल के आती हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का दिल गमजदा जो हुआ तो सबब क्या बना? पानी बना, पानी में बेटे को डाला। तो जाहिरत तो दरिया में डालना सबब बन रहा है ना, तो पानी सबब बन रहा है गम मिलने का, मगर उन्होंने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर डाल दिया। फिर जरा गौर कीजिए कि बनी इसराइल को अल्लाह ने निजात दी फिरौन से, चाहते तो जैसे कारून को जमीन में दफन किया था फिरौन को भी दफन कर देते, चाहते तो फिरौन को वैसे ही मौत आ जाती, मगर नहीं। अल्लाह ताला ने फिरौन के साथ क्या किया, फिरौन को पानी में डबो के मारा। कैसे मौत आई, पानी में डूब के मरा। क्यों, कि मेरी एक बंदी ने मेरे ऊपर यकीन करके बेटे को पानी में डाला था, आज उसका दिल गमजदा हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा, एक वक्त आएगा मैं इसी दरिया के पानी को तेरे लिए खुशी का सबब बना दूंगा। और देखिए मुफस्सरीन ने एक और नुक्ता भी लिखा है, वो फरमाते हैं कि फिरौन उसको अपने आबपाशी के निजाम पे और दरियाओं के निजाम पे बड़ा भरोसा था, तभी तो उसने कहा था तकरीर करते हुए, हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये देखो मेरे कैसे कैसे दरिया हैं जो आबपाशी का मेरा निजाम है। तो उसके दिल में ये यकीन था कि इन आबपाशी के निजाम से जो आमदनी होती है, इज्जत मिलती है, अल्लाह ने उसको जिल्लत दी तो सबब क्या बनाया, उसी दरिया को बनाया जिसके बारे में वो कहता था कि ये मेरे तहत चलती हैं, वो तहत चलने वाले दरिया में ही उसको डबो के दिखा दिया। एक और मिसाल कुरान मजीद में से, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, तो उन्होंने उनके कुर्ते पर झूठ मूठ का एक खून लगा दिया, वजाऊ अबा हमेशा अयबकून, रोते हुए आ गए और कहने लगे कि भाई को तो भेड़िया खा गया और हम उसका कुर्ता लाए हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम को जो दुख पहुंचा, तो जाहिरी सबब क्या था, कुर्ते को देखा, कुर्ता दिखाया ना कि देखो ये खून आलूद कुर्ता है, तो जाहिरी सबब जो दुख मिलने का बन रहा है वो बेटे का खून आलूद कुर्ता है। खैर, फिर अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता फरमाई, फिर एक वक्त आया कि भाइयों ने माफी मांगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया, तो भाइयों ने बताया कि आपके वाले साहब अब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज्न, उनकी तो आंखें सफेद हो गई, बेनाई चली गई। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे कि अच्छा मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह मेरे वाले साहब की बेनाई को ठीक कर दे, ये मुमकिन था ना, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा। ये सुनने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इज़हबू बिकमीसी, मेरी कमीज को लेके जाओ और वाले साहब की आंखों से लगाओ, फरतद बसीरा, उनकी बेनाई लौट आएगी। अल्लाह आप वैसे ही आंखों को ठीक फरमा देते, मगर अल्लाह ने सबक देना था, ऐ मेरे याकूब अलैहिस्सलाम आपको गम मिला था बेटे के खून आलूद कुर्ते को देखकर, अब उन्हीं का कुर्ता आ रहा है, आंखों से लगाएंगे बेनाई लौटेगी, फिर बेटा दोबारा मिल जाएगा। तो जो जिल्लत का सबब होता है अल्लाह उसको इज्जत का सबब बना के दिखा देते हैं। उसूल फितरत है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, टू एवरी एक्शन There is always equal and opposite reaction. इसको हम मानते हैं, साइंस इसके ऊपर काम करती है। कुरान मजीद में भी यही उसूल फितरत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी, इसको कहते हैं शरीयत की नजर में जजा मिन जिनसिल अमल। जैसा अमल करेंगे अल्लाह वैसा ही उसको बदला देंगे। चुनाचे कुरान मजीद से इसकी चंद मिसालें, एक तालिब इल्म होने के नाते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम यहूद पर हुक्म फरमाया था कि तुम यौम सब्त हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ सकते। वो क्या करते थे कि हफ्ते के दिन मछलियां बहुत आती थीं सतह पे, तो वो उनको हौज बना के उनको ट्रैप कर लेते थे और फिर बाकी दिनों में उनको पकड़ लेते थे। जाहिरा वो कहते थे जी कि हम हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ रहे, मगर मंशा खुदावंदी पूरी नहीं कर रहे थे, अपनी मंशा पूरी कर रहे थे, उनको अलग तो कर लेते थे ना। तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को मसख किया कि यूं ही कहें कि हम तो नहीं पकड़ते और पकड़ भी रहे हैं। जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को मसख किया, अल्लाह ने फिर कौम यहूद पर क्या अजाब भेजा, फरमाया कुल ना लहुम कूनु किरादतन खासेइन, तुम फटकारे हुए बंदर बन जाओ। इन्होंने अल्लाह के हुक्म को मसख किया, अल्लाह ने जवाब में उनके चेहरों को मसख फरमा दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। कुरान मजीद से दूसरी मिसाल, ईमान वाले जब जाएंगे तो अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में बहुत लज्जत की चीजें बनाई होंगी, मगर कुरान मजीद की आयत बतलाती है फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन। कोई जी नहीं जानता कि इन लोगों की आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने क्या तैयार कर रखा है। एक तालिब इल्म सोचता है कि अल्लाह जन्नत में जब आपने इतनी चीजें बनाई तो आप कहते उनके दिल के सुकून के लिए क्या बनाया, उनके मजे के लिए हमने क्या बनाया, मगर रब्बे करीम का फरमान क्या है, उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या बनाया। तो मुफस्सरीन ने नुक्ता लिखा कि इस कलाम को फरमाने का मकसद ये था कि ये तहज्जुद गुजार लोग थे जिनके बारे में कहा गया कि ताता जाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिए यदऊन रब्बहुम खौफम वतमा वमिमा रज़क़नाहुम युन्फिकून। अब ये जो तहज्जुद में रोज उठते हैं ना, तो फजर के वक्त उनकी आंखें नींद से बोझल होती हैं, आंखें नींद को तरस रही होती हैं, क्योंकि इन तहज्जुद गुजारों की तहज्जुद पढ़ने से आंखें बोझल होती थीं, आंखें नींद को तरसती थीं। रब्बे करीम ने अजर देते हुए फरमाया हमने जन्नत में इनके लिए वो तैयार कर रखा है जो इनकी आंखों की ठंडक बनेगा। कुरान मजीद से तीसरी मिसाल, क्यामत के दिन जब मुजरिम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम। अगर तुम देखो उस वक्त उन मुजरिमों को सर झुके होंगे अल्लाह के सामने, सर झुका के खड़े होंगे, तो तालिब इल्म के ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये क्यों कहा कि सर झुका के खड़े होंगे। यूं भी कह सकते थे कि अल्लाह के सामने खड़े होंगे। मुफस्सरीन ने नुक्ता लिखा, इनका देखो ये नाफरमान लोग थे, इनके सामने अल्लाह का हुक्म पेश किया जाता था, ये कहते थे हम नहीं मानते, ہم اس حکم کے آگے نہیں جھکتے، چونکہ اللہ کے حکم کے آگے نہ جھکنے کی بات کرتے تھے۔ جب اللہ نے قیامت کے دن کو کھڑا کیا، فرمایا ذرا دیکھو اب ان کا حال، نا کسور اوسہم عند رب، اب جھکے کھڑے ہیں اپنے رب کے سامنے، اپنے قصوروں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سے ایک چوتھی مثال، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے ایک قانون بنا دیا تھا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے کہ بنی اسرائیل والوں کی توبہ ایسی تھی کہ آسمان پہ بادل آ گیا تھا، اندھیرا ہو گیا تھا، اور انہوں نے چھریوں سے اپنے آپ کو مارا تھا، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔ امت مسلمہ کے لیے تو ایسا نہیں ہے، امت مسلمہ کے لیے تو رب کریم کا اتنا قانون ہے، الندم توبۃن، کہ دل میں بھی اگر کوئی بندہ گناہ پہ نادم ہو جائے گا تو یہ اس کی توبہ کہلائے گی۔ تو فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ، مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا۔ مفسرین نے لکھا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ اور تھا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کی بات رکھی تھی تو بنی اسرائیل کا کہنا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، ہم نہیں آپ پر ایمان لائیں گے جب تک اللہ کو ہم واضح طور پر نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے ایمان لانے کے لیے اللہ کو واضح دیکھنے کی شرط لگائی تھی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے بھی واضح شرط لگا دی، تمہاری بات پہ نہیں ہم تسلیم کریں گے، اپنے بدن کو کاٹ کے خون نکال کے دکھاؤ گے تب تمہاری توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کا معاملہ اور تھا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین کی طرف دعوت دی، کوئی کوسچن نہیں پوچھا، بات کو تسلیم کر لیا، کیونکہ اعتماد کر کے بات کو تسلیم کر لیا۔ اللہ نے فرمایا یہ امت میرے محبوب کی بات کو اعتماد کر کے تسلیم کر چکی، جب اس کی توبہ کا وقت آئے گا مجھے کسی پروف کی ضرورت نہیں، یہ فقط دل میں نادم ہو جائیں گے، میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ قرآن مجید سے ایک اور مثال، مختلف قوموں پہ مختلف عذاب آئے، کسی کی شکل بدلی گئی، کسی کو ایک چیخ آئی سب مر گئے، کسی پر بجلی کڑکی، کسی کو زمین میں دھسایا گیا، کسی کو پانی میں ڈبویا گیا۔ ایک قوم ہے قوم لوط، جس کو کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے اوپر ذرا انوکھا سا عذاب آیا کہ ان کو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور زمین کے ٹکڑے کو کاٹ کر آسمانوں تک لے گئے اور وہاں سے جا کے زمین اس کو الٹ دیا۔ بھئی یہ معمول سے ہٹ کے عذاب، کیا حکمت ہے اس میں؟ مفسرین نے لکھا بات سمجھ میں آتی ہے، اس قوم کے اندر بیماری کیا تھی کہ یہ لواطت کے مرتکب ہوتے تھے، اللہ رب العزت نے مرد کو فاعل بنایا، یہ اس کو مفعول بناتے تھے، تو اللہ کی ترتیب کو الٹتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کی ترتیب کو الٹا، اللہ فرماتے ہیں فجعل آلیہا سافلہا، ہم نے بھی ترتیب کو الٹ دیا، جو ان کے اوپر کا حصہ تھا نیچے کر دیا، نیچے کے حصے کو ہم نے اوپر کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا عظیم کلام ہے اللہ رب العزت کا۔ ایک اور مثال، قوم عاد نے اپنی طاقت کے نشے میں آ کر کہا تھا من اشد منا قوہ، ہماری جیسا کون ہے طاقت والا، اور واقعی تھے بھی بڑے طاقت والے، وطن ہتون من الجوال بیوتا، पहाड़ों को खोद के घर बनाते थे, ऐसे लहीम व शहीम थे। तो उनको बड़ा मान था अपनी ताकत पे, और अल्लाह ताला तस्दीक भी करते हैं लम युखलक मिसलु हाफिल बिलाद, कि ऐसी कौम ताकत वाली शहरों में नहीं पैदा हुई। फिर तो जब बंदे को ताकत का नशा होता है ना, वो समझता है कि बस अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर, अल्लाह ने उनके ऊपर हवा भेजी, फारसलना अलैहिम रीहन सरसरा, और वो हवा ऐसी थी कि मोमिन को तो महसूस होता था बड़ी मजे की हवा है, जरा गिरेबान भी खोल दो कि अच्छी हवा लगे, और काफिर के लिए वो इतनी तेज थी कि पटक पटक के जमीन पे उनको मारती थी, हत्ता के उनकी लाशें जमीन पर ऐसे बिखरी पड़े थी कि अन्नहुम आजाज़ो नखलिन खाविया, जैसे खजूरों के तने जमीन पे पड़े होते हैं। अब इनको इस तरह का अजाब दिया हवा का, मुफस्सिरीन ने लिखा जी इनको ताकत पे नाज था, ये समझते थे हमारे कदम बहुत जमे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारे कदम कितने जमे, हवा को भेजूंगा कदम उखड़ेंगे, पटक के जमीन पे मारेगी और तुम्हारी मौत वाकई हो जाएगी। जैसा उनका अमल वैसे उनको जजा। कुरान मजीद से एक और मिसाल, जुलेखा ने बंद कमरों में यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाया, चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराअत बार बार दिलवाई। कमरे बंद थे ना, एक कमरा उससे निकले, फिर दूसरा कमरा उससे निकले, फिर तीसरा कमरा, तो बाहर आ गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी वैसा ही मामला किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो बराअत थी, जो सदाकत थी, उसकी भी एक नहीं गवाही दिलवाई, कई गवाहियां दिलवाई। सबसे पहले गवाही तो बच्चे ने दी कि भाई कमीज को देखो पीछे से फटी है तो औरत का कसूर, आगे से फटी है तो मर्द का कसूर। कमीज को देखा तो पीछे से फटी थी, चुनाचे बच्चे की गवाही से पता चल गया कि औरत का कसूर था, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे थे, सच्चाई वाज़े हो गई। मगर रब्बे करीम ने सिर्फ यहीं तक नहीं, फिर दोबारा उसके खाविन से गवाही दिलवाई, और खाविन ने अपनी बीवी को कहा कि इन्नके कुंती मिनल खातीन, कि मैं जो ये सारा मामला देख रहा हूं ना, तो मेरी फाइंडिंग ये है कि कसूर तेरा ही है। बरी होने की दूसरी गवाही, और फिर उसी सूरत में बरी होने की तीसरी गवाही अल्लाह ने खुद जुलेखा की जुबान से दिलवाई। कहने लगी अना रावत तो हूं अन नफ्स ही फस्तासा, मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाया था मगर वो मेरे बहकावे में नहीं आया, अपनी बात पे पक्का रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखें, बंद कमरों में इल्जाम था, जैसे एक एक करते पर्दा खोलते हैं ना, तो तीन गवाहियां दिलवाकर बात को पक्का कर दिया। मगर एक मिसाल और भी है, वो है सैयदा मरियम की। बीबी मरियम गुसल करने के लिए जा रही हैं मकान अनशर की या मशरक की जानिब, तो अचानक एक भरपूर नौजवान इंसान देखा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको भेजा बशरन सवीया, भरपूर मर्द की शक्ल में। अब बीबी मरियम कोई आज के दौर की बिगड़ी हुई बेगम तो थी नहीं कि खलवत में किसी मर्द को देख के मुस्कुराहट दे। जब बीबी मरियम ने देखा तो वो घबरा गई, कहने लगी कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं, इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानी मिन का इन कुंत तकिया, मैं रहमान की पनाह मांगती हूं। अब जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो घबरा गई, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी कि इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं रब का भेजा हुआ नुमाइंदा हूं, लिआहब लकी गुलामन ज़किया, कि आपको एक नेक बेटा मिले। बीबी मरियम पहले से ज्यादा घबरा गई, पहले तो मर्द को देखा था ना, और अब तो वो मर्द कह रहा है कि तुम्हारा बेटा होगा। कुंवारी लड़की को कोई कह दे तो उसके लिए तो ये बड़ा सदमा। तो बीबी मरियम कहने लगी, अन्ना यकून अली गुलाम, कैसे मेरा गुलाम बेटा हो सकता है, वलम यम सस्ती बशर, ना मुझे किसी बशर ने छुआ, वलम अको बगिया, न मैं हूं बदकार। तो मुफसरीन ने लिखा कि ये दो बातें क्यों कहीं, बीबी मरियम जानती थी बेटे होने के दो तरीके होते हैं, या तो निकाह होता है या फिर जिना होता है। तो दो बातों का रद्द किया, वलम यम ससनी बशर, न तो है मेरा निकाह, वलम अको बगिया, न किया मैंने जिना, मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर बताया कि जी आपको बेटा परवरदिगार ने देना है, किसी जुल्फों वाली सरकार ने नहीं देना, क्यों घबराती हो। चुनाचे बीबी मरियम हामला महसूस होने लगे। ओह, ये बीबी मरियम के लिए एक अज़ियत का मामला था, जिस बच्ची ने एतकाफ की हालत में जिंदगी गुजारी हो, जवानी की उम्र तक इबादत करते करते पहुंची हो, पूरी कम्युनिटी को पता है, आज अगर वो अपने आप को हामला महसूस कर रही है तो उसके दिल की क्या कैफियत होगी। चुनाचे हारे हुए जर्नैल की तरह बीबी मरियम एक तरफ हटके बैठ गईं और कहने लगी, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा वकुंत नसियम मनसिया, ऐ काश इस वाके के होने से पहले मैं मर गई होती, मैं कोई भूली बसरी चीज होती। फिर क्या हुआ कि दर्द शुरू हो गई। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया। बात शायद लंबी हो जाएगी, किस्सा कोता, उनके यहां बच्चे की विलादत हो गई। जब बच्चे की विलादत हुई तो बीबी मरियम फातत बिही कौमहा तहमिलू, बच्चे को उठा के ले आई अपने घर, अपने कौम के लोगों के पास। कालू, कहने लगे, या मरियम लकद जीत शैयन फरिया, ये क्या तूफान चीज उठा के ले आई, वो तो तवक्को नहीं ना करते थे, ये क्या चीज उठा के ले आई। अब बीबी मरियम पहले से गमजदा थी, ऊपर से लोगों के बहतान ने और परेशान कर दिया। फशारती लई, उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि इसी से पूछो कि ये किधर से आया, तुम मेरा सर मत खाओ। अब जब बच्चे से उन्होंने इशारा किया तो क्या हुआ, बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुंत वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात मा दुमतु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया ज़ालिका ईसा इब्न मरियम। अब यहां एक तालिब इल्म के जहन में सवाल पैदा होता है, या अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बोहतान लगा था, एक बच्चे की गवाही से मसला हल हो गया था, एक फिक्रा बनता है, कमीज इधर से फटी तो इसका कसूर, इधर से फटी तो इसका कसूर, और यहां ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या गवाही दी, एक लंबी बात शुरू कर दी, तो यह गवाही का अंदाज बदल क्यों गया। मुहद्दिसीन ने नुक्ता लिखा, वो फरमाते हैं देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एक औरत एक फर्द ने इल्जाम लगाया था, फर्द के उस इल्जाम को रद्द करने के लिए अल्लाह ने एक गवाह को पेश कर दिया था, बच्चे को। और यहां बीबी मरियम का मामला और था, यहां कौम थी, एक मजमा था, सारा मजमा कह रहा था लकद जीत शैयन फरिया। मजमे के लिए फिर सिर्फ एक फिक्रा काफी नहीं था, अब मजमे के लिए तकरीर की जरूरत थी। चुनाचे ईसा अलैहिस्सलाम ने उस मजमे के सामने फिर बयान शुरू फरमा दिया। गवाही का अंदाज देखो कैसा है। एक और मिसाल कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां जिनाकार का तज़किरा किया वहां फरमाया कि वयखलुद फी ही मुहाना, हमेशा हमेशा का अज़ाब। अब ये जो है ना खालिदीन फीहा, ये तो लफ्ज कुफार के लिए इस्तेमाल हुआ है कि हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, और यही लफ्ज जिनाकार के लिए इस्तेमाल हुआ। तो तालिब इल्म के ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि इतना लंबा अजाब होगा। मुफसरीन ने जवाब लिखा, इसलिए कि जब आपस में नाजायज ताल्लुक थे ना, रोज यकीन दिलाते थे हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करते रहेंगे। क्योंकि कौल ये था हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ने फरमाया अच्छा फिर मैं जहन्नम में भी हमेशा हमेशा का अजाब दूंगा, जैसी करनी वैसी। आखिरी बात, एक आखिरी मिसाल कुरान मजीद से, सूरह फील में तफसील है कि जब अबरहा अपने हाथियों के लश्कर को लेकर आया बैतुल्ला शरीफ को गिराने के लिए, उसकी चाहत यह थी कि यह बैतुल्ला मरकज बन रहा है, इसको मैं मिटा दूं और इसकी बजाय यमन साइड पर जहां से वो आया था वहां एक अलग मरकज बनाऊं। तो वो बैतुल्ला को गिराने के लिए हाथियों का लश्कर लेके आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटे छोटे परिंदों को भेजा जिनको अबाबील कहते हैं, और उनके जरिए से उनको खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। ये वाकया सूरह फील के अंदर हम पढ़ते हैं। यहां तालिब इल्म के ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि इधर हाथियों का लश्कर और इधर परिंदे छोटे छोटे, मामला क्या। मुफस्सिरीन ने इसका अमूमी जवाब भी दिया, तहकीकी जवाब भी दिया। अमूमी जवाब तो यह दिया कि जानवरों में से आम तौर पर हाथी सबसे ज्यादा मजबूत जानवर समझा जाता है, यानी कई मर्तबा जंगल में दो दो तीन तीन शेर मिलकर हमला करते हैं तो हाथी को नीचे जमीन पर नहीं गिरा पाते, कई घंटों की कोशिश के बावजूद, ये इतना स्टेबल जानवर होता है। तो हाथियों में से, तो जानवरों में से ये सबसे भारी भरकम मजबूत जानवर था जो अबरहा लेके आया था बैतुल्ला को गिराने के लिए। अल्लाह ने फरमाया अच्छा फिर जानदारों में ये जो परिंदा होता है ना, ये नाजुक सी जान होती है, तुम सबसे कवि को लेके आए हो, मैं तुम्हारे मुकाबले में सबसे कमजोर नन्ही सी जान चिड़िया को भेजता हूं और देखो तुम्हारे हाथियों की क्या गत बनाता हूं। समझ में आता है, लेकिन एक तहकीकी जवाब है वो इससे भी ज्यादा अच्छा। वो तहकीकी जवाब ये था कि मुफस्सरीन ने लिखा कि असल में अबरहा चला था उस चीज को मिटाने के लिए जिसको अल्लाह ने इज्जत दी, اور اس کو عزت دلانے کے لیے جس کی کوئی عزت اللہ کے ہاں نہیں تھی, تو وہ ترتیب خداوندی کو الٹنے چلا تھا, جس کی حیثیت نہیں اس کو معزز بنا دے, جو عزت والا ہے اس کو نیچے لے آئے. تو اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو بدلنے چلا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہاتھیوں کو زمین میں دھسا دیتے, ہاتھیوں میں کوئی بیماری پیدا کر دیتے, کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے تھے, مگر نہیں, شریعت کے اندر جزا من جنس العمل. اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا تم میری بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنے کے لیے چلے ہو, اب رہا آج میں بھی اپنی ترتیب کو بدل دیتا ہوں. عام ترتیب یہ ہے, انسان صیاد ہوتا ہے, پرندے اس کا نشانہ ہوتے ہیں, صید ہوتے ہیں, لیکن آج میں ترتیب بدلوں گا, میرے پرندے صیاد ہوں گے, انسان تو ان کا شکار بنے گا. پرندوں نے کیسے ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے, ترمیہم بحجارہ. تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو بھائی شریعت میں جو احکام ہمیں بتائے گئے ان کے بارے میں ہمیں دل میں پکا یقین رکھ لینا چاہیے. چلیں احادیث مبارکہ سے بھی چند مثالیں. حدیث پاک میں ہے جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس میں بیماریوں کی کثرت. اب ذرا غور کیجئے گا, زنا میں جسمانی لذت تھی, جیسی کرنی ویسی, اور بیماری میں جسمانی اذیت ہوتی ہے. تو اصول وہی نظر آیا, ناپ تول میں جو قوم کمی کرے گی اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے. ناپ تول کی کمی میں اونچ نیچ ہوتی ہے, اور جب بادشاہ ظالم ہوتا ہے تو بھی حقوق کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے. جو زکوٰۃ نہیں دے گا اللہ اس کو بارش کو روک دیں گے. کیوں؟ زکوٰۃ نہ دی غربا متاثر ہوئے, اللہ نے بارش کو روک دی عمرا متاثر ہوئے, نہ فصل ہوئی نہ باغ کا پھل ہوا. فرمایا وعدہ خلافی کرو گے تو ہم قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. کیوں؟ وعدہ خلافی بے وفائی ہوتی ہے. فرمایا تم میرے ساتھ بے وفائی کرو گے, ہم تمہیں بے یار و مددگار کر دیں گے, دشمن کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. جو قوم حکم خدا کو توڑے گی ان میں خون ارزاں ہو جائے گا. کیوں؟ انہوں نے حکم خدا کو بے قیمت سمجھ کے توڑا, اللہ نے انسانوں کے جانوں کی قیمت ہی ختم کر دی. مولی گاجر کی طرح کترے جاتے ہیں. تاریخ سے مثالیں ملتی ہیں. حضرت زید نے اپنے والد کو چھوڑا تھا. صحابہ میں سے یہی صحابی تھے جن کو زید بن محمد کہلایا گیا. تو دیکھو کیسی جزا ملی, باپ کو چھوڑا, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کا نام اللہ نے والد کے نام پہ دیا. سلمان فارسی لانوں نے وطن کو چھوڑا تھا, خاندان کو چھوڑا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا السلمان منا اہل البیت, اہل بیت کو چھوڑا تھا, اہل بیت میں شامل ہو گئے. عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ, چچا نے ان کے جسم کو ننگا کر دیا تھا اور گھر سے دھکا دیا تھا. جب ان کی وفات ہوئی نبی علیہ السلام نے ان کے کفن کے لیے اپنی چادر عطا فرما دی تھی. تیرا بدن میرے دین کے لیے ننگا ہوا, میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے تیرے بدن کو ڈھانپ کے دکھاؤں گا. تو اللہ کے ہاں ایک قانون ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں. ہم تو مرد ہیں, عورتوں کو بھروسہ تھا اللہ کے وعدوں پر. چنانچہ میں واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں, سنیے گا ذرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال دو. ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بہت کیئرفل ہوتی ہے, واچفل ہوتی ہے, رسک نہیں لیتی, مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تخافی ولا تحزنی, ڈرنا بھی نہیں گھبرانا بھی نہیں, انا رادہ الیک, ہم اسے تمہارے پاس لٹائیں گے, وجائلوہ من المرسلین, हमने इसे रसूलों में से बनाना है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को ये अल्लाह का पैगाम मिला, इल्हाम हुआ, तो वो यकीन कर गई, बच्चे को डाल दिया। बिल आखिर बच्चे को फिरौन ने पकड़ा और फिरौन उसको लेकर घर आया। अल्लाह फरमाते हैं वहर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन कब, हमने दूध हराम कर दिया औरतों का, वो दूध ही नहीं क्यों पीते। फिरौन परेशान, ये फीडर का जमाना था नहीं, औरतें ही दूध पिलाती थीं, औरतें आ रही हैं, मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पीते। फिरौन का ऐलान कि कोई औरत आके इसको दूध पिलाए, सूट कर जाए तो बस बहुत अच्छा। चुनाचे क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने बेटी को भेजा, जाओ पता करो सूरत हाल का। बेटी गई, अम्मी आओ, भाई तो दूध नहीं पी रहा। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा चली गई, दूध पिलाया, बच्चे ने दूध पी लिया। फिरौन ने कहा बस अब इस औरत को वापस नहीं जाने देना, ये महल में रहेगी। दो तीन दिन तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा महल में रही, फिर फरमाने लगी भाई अपना घोंसला अपना, कच्चा हो या पक्का, मैं तो अपने घर जाती हूं। फिरौन कहने लगा सुनो सुनो, बच्चे को भी अपने साथ ले जाओ, वहीं दूध पिला देना, मैं तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे घर पहुंचा दिया करूंगा। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं फरददनाहु इला उम्मिही, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को लौटा दिया उनकी वालदा के पास। कई तकर्रईनुहा, उसकी आंखें ठंडी हों, वले तालम, और वो जान ले अन्नवाद अल्लाह हक, कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अल्लाह काश कि अल्लाह ताला औरतों जैसा यकीन हमें अता फरमा देते। तो भाई इस यकीन को सीखने की जरूरत है। अब लुब्बे लुबाब सुन लीजिए कि ये यकीन दावत के रास्ते से भी बनता है। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज के दौर में जैसे दावत का काम खोला, पूरी दुनिया में आवाज लग रही है और वाकई यकीन बन रहा है। ये यकीन कामिलीन उलमा की सोहबत में भी बैठ के बनता है। कैसे? हजरत मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह का यकीन देखें कि उन्होंने उसूल हश्त गाना बनाए। उसूल हश्त गाना क्या थे कि दारुल उलूम की मुस्तकिल मुआवनत के लिए कोई भी चीज कबूल नहीं की जाएगी। आज के मुहतमिम दुआएं मांगते हैं अल्लाह कोई पक्का बंदोबस्त कर दे, और हजरत फरमाते हैं कि पक्का बंदोबस्त कोई देना चाहेगा कबूल नहीं किया जाएगा, अल्लाह से नजर ना हट जाए। और तीसरा बनता है अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ के। हमारे मशाइख ने अल्लाह पे यकीन पाया। राबे बसरिया के पास मेहमान, दरवाजा रात को खटखटाया गया, कौन जी खाना लेके आया है? फरमाने लगी कि कितनी रोटियां? खादमा ने कहा 9 रोटियां। इसको को चला जाए, ये हमारा खाना नहीं। फिर आधे घंटे बाद, कौन खाना लाया है? कितनी रोटियां? 9 रोटियां। इसको को चला जाए, ये हमारा खाना नहीं। फिर तीसरी मर्तबा, अब रात भी देर हो गई थी, मेहमानों को भूख भी थी, तो खादमा ने कहा आप हर दफा खाना वापस कर देती हैं, तीसरी मर्तबा कोई बंदा आ रहा है तो ले लें खाना। कहने लगी जाओ पहले रोटियां गिनो। कितनी रोटियां? जी 9 रोटियां। कहने लगे हमारी नहीं है ये खाना नहीं है हमारा। उसने कहा क्यों नहीं है हमारा? कहने लगी कि सुबह मेरे पास एक रोटी थी, साइल आया था, मैंने रोटी अल्लाह के रास्ते में दे दी थी। मेरे रब का वादा है मन जा अबिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लाएगा मैं 10 उसको जो है ना वो दूंगा। मैंने एक रोटी दी थी, मुझे इसके बदले 10 मिलनी चाहिए, ये 9 हैं। जब उन्होंने ये कहा खादमा ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे 10 ही हैं, एक मैंने अपने लिए रख ली थी। औरत होके अल्लाह के वादों पे ऐसा भरोसा था। अल्लाह ताला हमें भी अपने वादों पे भरोसा अता फरमाए ताकि बकिया जिंदगी हम यकीन कामिल के साथ जिंदगी गुजारें। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से न उम्मीदी। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से न उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यकीन कामिल अता फरमाए। व आखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिल आला वहब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला
آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. میرے مولا، ہم دل مل یقین کی زندگیاں گزارتے پھر رہے ہیں، تذبذب کی زندگی ہے. اللہ ہمیں اپنے وعدوں پہ کامل بھروسہ عطا فرما. اے کریم آقا، ایمان میں مضبوطی عطا فرما. اے اللہ، ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت عطا فرما. کریم آقا، ہم پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ، اس مجمع کے اٹھنے سے پہلے سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. مقامی دوستوں نے جس محبت کے ساتھ یہاں آنے کی دعوت دی، اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما. اے کریم آقا، جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، جائز حاجات کو پورا فرما. کریم آقا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ہمارے والدین، عزیز اقارب، مشائخ جو فوت ہو چکے، ان کی مغفرت فرما. جن کی آپ نے مغفرت کر دی، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو ولینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.